istanti, चौदह जून 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मन पर करे। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, दो लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल मीट का और एक यूट्यूब लाइव का। जिस भी लिंक पर आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। ये दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं, दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं रहती। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है इसलिए तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। क्या मतलब है तीसरे नेत्र का और इन दो आंखों का और आंख डूबने का? आंख डूबने से क्या मतलब, क्या चाहते हैं बाबा हमारे से, कौन बताएगा? तीसरा नेत्र है समझ, फिर
तीसरा नेत्र मिला है बाबा, कहते हैं
बस मुझे याद करो। ये आप डूबने वाला क्या चक्कर है, आप किसमें डूबती है क्या? हमें किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षण ना हो। दो है हमारी जिस्मानी आंखें, जो इस स्थूल दुनिया की चीजों को देख सकती है, इस नाशवान दुनिया की चीजों को देख सकती है, क्योंकि ये स्थूल आंखें हैं। जो बाबा ने हमें आंख दी है वो आत्मा को आंख दी है, बुद्धि को आंख दी है, वो सूक्ष्म आंख है, वो समझ की आंख है, वो ज्ञान का नेत्र है जो बुद्धि को मिला है, आत्मा को मिला है, शरीर को नहीं। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम वो देख सकते हैं जो इन दो आंखों से नहीं देख सकते। जो हम इन दो आंखों से नहीं देख सकते वो हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते। ऐसा क्या है जो हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते?
ज्ञान
आत्मा परमात्मा और वर्ल्ड ड्रामा इसको हम देख सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। जो इन दो आंखों से नहीं देखा जाए, इसलिए अब हमें इन संसार की किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में आकर्षण नहीं होना। प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? उनकी पुरानी दुनिया में आंख डूबेगी नहीं, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर दे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुराना देह है, इनको भी छोड़ना है, इनका मोह सब से टूटता जाएगा, नष्टो मुआ होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहां का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है, ये सब हद का है। ओम शांति। बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं। ये भी नहीं बतलाया, कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं, इनका ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है, ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता, परंतु वे भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सत्युग में तो कोई शास्त्र हो रहता ही नहीं। और धर्मों के समय विनाश तो होता ही है, होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं, गायन भी एक गीता काव्य, गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी तो सब रचना है, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कुछ वर्षा नहीं मिलता। अभी ये है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है, ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को भगवानों वाद, बच्चों प्रति फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत का जान गए हैं। ये कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं, ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं, बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं। ब्रह्मा बाबा ये है हमारी बड़ी माँ, मम्मा है छोटी। इस बड़ी माता के मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि, पानी नहीं निकलता। उन्होंने गौ मुख बना दिया, गाय का मुंह, उसमें से पानी निकाल दिया, तो गौ मुख से पानी पीने जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, कितना दूर गौ मुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो ये तो जानते हो, बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया, बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, टीचर कोई क्षमा नहीं करते, दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया, दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता है ना। दे अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है, जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो दे के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं। मीरा श्री कृष्ण की याद में रहती थी, मीरा कृष्ण की याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहां ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में ये रहता है ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। वे हमको पढ़ाते हैं, ये भी तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नर्क में ये अंतिम जन्म है, इनको कहा जाता है गौरव नर्क, बहुत गंद है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, ये हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छी दुनिया खत्म हुई पड़ी, मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है तो दिल में आता है ना, ये मकान टूट ही जाएगा, ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना। हम यहां से जाना चाहते हैं, बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगा, अब इस पुरानी दुनिया से किसी भी चीज से दिल नहीं लगा, क्योंकि बाबा कहते हैं सब टूटने, ये सब खत्म हो जाने हैं, ये हमारे साथ घर जाने नहीं है, फिर दुनिया की सफाई होनी है। जब ये महल टूटने ही हैं, फिर इनको रिपेयर क्यों करें? मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश। याद करो तो विकार विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पट भी भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सजाएं खाएंगे, पट भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को पुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप की को याद करना है, बाप को याद करना है तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंच से ऊंच, ये भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं, वे बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह अर्थ भी, शरीर का निर्वाह करने के लिए भी काम करो, शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो और ये पढ़ाई भी पढ़ो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। परंतु बाबा कहते ट्रस्टी होकर रहो, परंतु बाबा क्या कहते हैं, ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी किसे कहा जाता है कौन बताएगा? निमित्त आत्मा ट्रस्टी बनकर काम करती है। कोई एग्जाम्पल देकर समझाएं ताकि सबको समझ में आ जाए। और कोई बताए? कोई दुनिया वाला ट्रस्टी का एग्जांपल दो। हाँ जी, ट्रस्टी का मतलब पहले समझे ना। कोई मंदिर है, कोई धार्मिक संस्थान है या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके अंदर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेवारी दी जाती है कि आपने इस ट्रस्ट को संभालना है। आपको संभालने के पैसे मिलेंगे, सारा हिसाब रखना है। इस ट्रस्ट के ये नियम है, वो उन नियमों के अनुसार उसको संभालता है। उसे दो प्रकार के होते हैं ट्रस्टी, एक पेड होते हैं, एक मतलब क्या बोलते हैं, फ्री सेवा करने वाले होते हैं, वॉलंटियर होते हैं। दोनों के लिए नियम यही एक ही होता है कि आपने उसके लिखे हुए बाईलाज को, उस ट्रस्ट के बाईलाज लिखे जाते हैं कि इसको संभालने वाले के क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो वो उन कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करता है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो वॉलेंटियरी सेवा कर रहा हो। ये होता है दुनिया का ट्रस्ट। और बाबा ने हमें जो ट्रस्ट बनाया है, इसके अंदर बाबा ने अपना कुछ दिया नहीं। वहां तो ये होता है कि कोई मालिक होता है उसका, वो मर गया है, वो नहीं है। दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों स्टेज होती हैं, परंतु उसको संभालने की ड्यूटी दी जाती है। और यहाँ बाबा कहते, बच्चे जो कुछ भी तुम्हारा है वो मुझे दे दो, आप मेरा समझकर इसको संभालो। ये सिर्फ बाबा का है और मैं इसको संभालने के निमित्त, बस आपने उसे निमित्त बन के संभालना है सिर्फ बाबा आपका नहीं, परंतु आपने संभालना बड़ी ईमानदारी के साथ, किसी प्रकार की उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहां भी हमें बाबा का समझ करके तन मन धन और जन ये बाबा को दे दिए हैं। अब ये बाबा के हैं, इसको कभी भी अपना समझना माना भ्रष्टि बनना। इस तन मन धन को जन को चारों में से किसी को भी अपना समझा तो हम भ्रष्टि। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। और कुछ भी नहीं, और हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी ये दे भी नहीं बाबा, हमारी ये दे भी नहीं है, ये तो पुरानी दे है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाता है। हमें क्या बन जाना है? नष्टो मोहा बन जाना है, हो जाना है। ये बेहद का वैराग्य है, ये क्या है हमारा? बेहद का वैराग्य है, वो है हद का वैराग्य। दुनिया वाले करते हैं हद का वैराग्य, एक परिवार को छोड़ दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया, जंगल में चले गए, फिर वहां जाकर और लोगों का परिवार बना लिया। हद का परिवार छोड़ना, हद की चीजों का त्याग करना हद का वैराग्य आता है। बुद्धि में है, हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई आंख में, कोई भी आंख नहीं देखती। अब तो अपने घर जाना है, कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था, उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है, ये है बेहद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके, कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया, तुम भी समझते हो। अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़े ही था, सारी राजधानी थी ना, अकेला तो नहीं था। तुम समझते हो अभी हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नर्क से नफरत आती है, अभी तुमको इस नर्क से नफरत आती है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर वही, और निकलेंगे जो कल तो पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है, कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नर्क। अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है, बच्चों आदि में मोह की रग है, वे टूटती नहीं, मोह वश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराई, परंतु बच्चों को भी ला समझाया जाए, बच्चों को भी ला समझाया जाता है स्वर्गवासी होने के लिए। एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो हमको, पूछते हो उनको नर्क में डालें। एक तरफ तो तुम यहां क्या ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, समझ ले रहे हो, और फिर तुम दूसरी तरफ पूछ रहे हो कि हम अपने बच्चों को नर्क में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो, बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं, इनका मोह है। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे, बच्ची की तो करानी ही है, बच्ची है उसकी शादी तो करानी है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चा बीके बने या ना बने, बच्ची बीके बने या ना बने, बात कॉमन चल रही है। बात ये है कि बच्चे को समझाओ कि शादी ना करें, क्योंकि ये पेरेंट्स चाह रहे हैं, पेरेंट्स पूछ रहे हैं बाबा से कि बेटे की शादी करें, तो बेटे के में मोह है उनका, वो चाहते हैं कि बहू रानी आनी चाहिए, और बाबा से पूछ रहे हैं। अब बाबा ये भी कहे के मत करो और ये शादी करके आए, तो ये तो हो गया भगवान की आज्ञा का, भगवान ने कहा था मत करो, इन्होंने फिर भी कर लिया। इसलिए बाबा कहते मैं तो कहूंगा के मत करो, नहीं बाकी ना करूं, समझा तो दिया है ना, फिर मैं ये ना करूं तो ये मेरी आज्ञा का अवज्ञा करेंगे, तो इनको सजा ज्यादा हो जाएगी। बात की आप पहले बच्चे की बात आप समझ गए हैं तो मैं आगे चलूं। बच्चे के लिए शादी करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है ना करे। बाबा कहते समझाओ, नहीं समझता तो उसकी मर्जी। अब हो चाहे बच्चा चाहे बच्ची, अब बच्ची में आप बच्ची की बात को ध्यान से समझना है कि बच्ची जो है कई बार शर्म करती है। आजकल की लड़कियां शर्म नहीं करती हैं, शर्म करती है, वो अपनी बात नहीं कह पाती है क्योंकि बाबा ने जिस समय मुरली चलाई है उस समय फिर भी लड़कियां सीता धारे की बात कम करती थी। तो इसलिए बड़ा बच्ची की शादी यदि ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना चाहती है तो उसकी शादी कर दो। आप नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, वो गंदी संगत में पड़ जाएगी और फिर खराब हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है, गलत संगत में आकर खराब हो जाती है। वो हमारे वो बात अलग है, परंतु मेन बात है कि बाबा कहते कि शादी करो ही मत। जब तुम पवित्र रहना चाह रहे हो तो बच्चों को तुम अपवित्र क्यों कर रहे हो, बच्चों को क्यों नरक में भेज रहे हो? बात है ना, वो भी बाबा ने इनसे एक्ट कराया, ब्रह्मा बाबा इनको देखकर फिर करने लग पड़े। एक घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते, ये है ही झगड़ों की दुनिया। कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटे काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, ये जंगल है, स्वर्ग को गार्डन कहा जाता है। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, परंतु ना समझ समझते नहीं। परंतु समझते कुछ भी तो इसलिए बाबा चाहते एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है, मनुष्य अपने को काटा समझते हैं। थोड़ा ही इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सिरस बंदर से भी बदतर। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं, तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भाग्य हाँ जी भगा देना चाहिए नहीं भगा देना चाहिए कह दिया बस भगाने वाले भगाए ना परंतु वो ताकत चाहिए ना मोह का किला ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके यहां तो नष्ट हो मोहा बनना मेरा तो एक हाँ जी पावन बनना है नहीं तो बहुत सजा खाएंगे पद भ्रष्ट होके आएगा अब अपने को सत्य प्रधान बनाने का एक घूरना लगा रहे शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो भगवान ने भारत को स्वर्ग बनाया अब वे फिर से आया है बना रहे हैं कहते हैं सिर्फ मां में कम याद करो अच्छा नीचे नीचे चिट्ठी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर एक इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बस अपना सब कुछ अर्पण कर देना है हमारा कुछ भी नहीं ये देह भी हमारी नहीं इनसे मुंह तो इससे मुंह तोड़कर मस्त मोहा बनना इनसे नष्ट मुराद बनो छोटे छोटे ये देवी हमारी नहीं इनसे मोह तो नष्ट मुराद बनना है कभी भी ऐसे नहीं भूलना चाह करना कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ जो रिश्ते पर दाग लग जाए सर्व देवी गुण धारण करने हैं अंदर क्रोध का भी जरा सा अंश ना हो। क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान कहना, सोचना और करना, कहना सोचना करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव सभी अभिवान प्रस्थ अवस्था में जाने के समय समीप आ रहा है। इसलिए समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना, ये तीनों एक समान बनाओ। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, हर श्रेष्ठ संस्कार उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होता। वो कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा अपनी परमात्म मिलन के खेल में मिलन मनाएंगे। औरों को भी बाप समान बनाना है। एक बाप से मिलन मनाने, मिलन मनाएंगे, औरों को यही साधना करेंगे। ठीक है, स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवा करेंगे तो खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी तो हमारे सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे समय में कोई गलत भी आ जाए, छोड़ो तुमने कर दिया मैंने, सब जैसे बीमारियां होती है ना, जैसे ठीक होते जाता है तो बीमारियां मर्ज होती जाती हैं, ऐसे ही जब हम स्वर्ग के लायक बनेंगे तो मर्ज उन्हीं के अनुसार बनता जाएगा। सेवाओं का उमंग उसका छोटी छोटी बीमारियों को भी मर्ज कर देता है। अव्यक्ति सारे आत्मिक चित्ती में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन जहां व्यर्थ संकल्प से भी मन का मौन होना चाहिए। जैसे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे ही बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ट्रैफिक कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो भेज करें। कोई प्रश्न रहता है तो आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते। व्हाट्सएप का नंबर वहां पर भी क्या हुआ। और विस्तार से जानने के लिए 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692700 पर केवल व्हाट्सएप करें।